नमस्कार मित्रों, आज आपकी मुलाकात एक बहुत ही खास शख्सियत से करवाने जा रहे हैं। बहुत से लोग इनको पहचान भी जाएंगे। ये हैं अतुल तिवारी साहब, नाटककार भी, निर्देशक भी, फिल्मों में पटकथा भी लिख चुके हैं और फिल्मों में एक्टिंग भी कर चुके हैं। तो उस हवाले से शायद कुछ लोग, बल्कि बहुत से लोग अतुल साहब आपको पहचान लेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया गोमन जी।
तो हिंदी के प्रोग्राम में ऑस्ट्रेलिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
बहुत ही अच्छा लग रहा है हिंदी का प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया में करते हुए। लग रहा है कि घर अपने आ गया हूँ, अपनी जबान में बात कर रहा हूँ। हालांकि मैं हिंदी नाटक ही करने के लिए इस समय ऑस्ट्रेलिया आया हुआ हूँ, लेकिन फिर भी आपसे मिलकर और यहाँ आकर के बड़ा अच्छा लग रहा है
जी, आप बहुत दूर आए हैं। वैसे तो बंबई से आए हैं, आपका ताल्लुक लखनऊ से है
जी।
और कशिश है, लखनऊ ने आपको छोड़ा नहीं लगता है अब तक।
लखनऊ के बारे में तो कहते हैं कि लखनऊ वाला कोई शहर छोड़ सकता है, लेकिन शहर लखनऊ कभी उसके
उसको
बाशिंदों को छोड़ता नहीं
वाह, लखनऊ के
है।
बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे,
जी जरूर
लेकिन जो आपका मुख्य काम है
जी
निर्देशन और थिएटर,
जी
उस सफर के बारे में थोड़ा सा बताइए।
जरूर गुमा जी। बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग आपके SBS रेडियो में बैठ के बातचीत करें, क्योंकि मेरे भी जिंदगी का और मेरी जिंदगी में नाटक का ताल्लुक जो है वो रेडियो के सिलसिले ही से शुरू हुआ। मैं लखनऊ रेडियो पे बहुत कम उम्र में, कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे थे कि मैं जुड़ता चला गया। मैं सरकमस्टांसेस की बात कर रहा हूँ, कोई इसमें कोई किसी मेरे टैलेंट की बात नहीं थी। हुआ यूं कि हम लोगों का घर जो था लखनऊ में, बिल्कुल रेडियो स्टेशन, लखनऊ रेडियो इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेडियोज इन द कंट्री एज यू नो, विच ओपन इन 1936। तो रेडियो स्टेशन हमारे घर के बिल्कुल बगल में हुआ करता था और मेरी माँ बहुत बिजी डॉक्टर थी एंड आई मस्ट हैव बीन अ हैंडफुल। तो मुझे क्या करें और कहाँ ले जाएं, कहाँ छोड़ें, और रेडियो पे उन दिनों कुछ एक ऐसा सिलसिला था लखनऊ रेडियो में कि बच्चों को भेजिए अगर आप, तो उनको म्यूजिक सिखाते थे। हफ्ते भर चलता था ये। तो मेरी माँ अक्सर जब कुछ नहीं करने को होता था और मैं अपने स्कूल से आ जाता था, तो मुझे रेडियो में धकेल देती थी और वहां से मेरा रेडियो में मैं जा करके संगीत सीखने का सिलसिला शुरू हुआ। और 8 साल की उम्र में मैंने अपना आई बिकेम अप्रूव्ड रेडियो वॉइस फॉर सिंगिंग, और 9 साल की उम्र में आई बिकेम अप्रूव्ड रेडियो वॉइस फॉर थिएटर, फॉर ड्रामा। और रेडियो ड्रामा करते करते फिर तो एक लत लगती चली गई ड्रामा की, और फिर ड्रामा से वाबस्तगी जुड़ती चली गई और रिश्ता बनता चला गया, और वहां से थिएटर। और इस तरह से 13-14 साल की उम्र तक मैं ये तय कर चुका था कि मुझे थिएटर को ही अपना करियर, अपना प्रोफेशन बनाना है, जो कि उन दिनों mid-70s में एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी बात थी। सिर्फ एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक जगह हुआ करती थी जहां आप थिएटर बाकायदा पढ़ सकते थे। और फिर आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि वहां मेरा एडमिशन हुआ और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली गया, जहां से मैंने डायरेक्शन में स्पेशलाइज किया। लिख फिर मैं फर्दर ट्रेनिंग के लिए जर्मनी गया, डॉचेस नेशनल थिएटर वाइमा में और बर्लिन आंसाम्बल बर्लिन में। और यूं अब बस थिएटर जिंदगी बन गई और हिंदुस्तान भर में थिएटर करता
हम शुक्रिया अदा करते हैं आपकी माता जी का, जिन्होंने आपको रेडियो स्टेशन की ओर धकेल दिया। हिंदी थिएटर की बात करते
जी।
हैं, क्या आपको लगता है, मुझे यूं लगता है कि अच्छे नाटक की एक किल्लत है हिंदी में, और हम देखते हैं कि आपने भी काफी सारे विदेशी नाटककारों के
जी
नाटकों
जी जी
को मंचित किया है स्टेज पर, गीत हैं, शेक्सपियर हैं, तो आप बताइए आपका क्या नजरिया है इसके बारे में।
नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हिंदी में अच्छे नाटकों की किल्लत है, कमी है। लेकिन मैंने अगर चुने हैं विदेशी नाटक करने, मैंने अगर शेक्सपियर को बहुत किया है, तो सिर्फ इसलिए नहीं किया है कि किसी कमी को पूर्ण करने के लिए। शेक्सपियर हिंदुस्तान के लिए कोई नई चीज नहीं है। तो मजे की बात यह है कि शेक्सपियर की मौत के 7 साल के बाद जब उनके फर्स्ट फोलियोज छपते हैं, तो उसमें से कुछ कॉपीज फर्स्ट फोलियो की हिंदुस्तान आती हैं, क्योंकि उस समय 1623, क्योंकि उस वक्त तक जहांगीर के दरबार के बाद में अंग्रेजों का हिंदुस्तान आना जाना शुरू हो गया है। और उसके साथ में जो पहली बार शेक्सपियर जब शाया होते हैं, पहली बार छपते हैं, तो उनकी कॉपीज हिंदुस्तान ट्रेवल करके पहुंचती हैं और
क्या
हिंदुस्तान में
बात है,
शेक्सपियर पढ़ा जाता
वाह।
है। हमारा इतना पुराना रिश्ता शेक्सपियर से है। और अब तो विद इंक्रीजिंगली ग्लोबलाइज्ड, आज जब वैश्वीकरण इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो इस संसार में शेक्सपियर कोई पराया हमारे लिए नहीं है, जैसे कि कालिदास किसी के लिए दुनिया में पराया नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं इस वक्त भी अगर यहां पे हूं, तो एक फ्रेंच प्ले राइट अगेन 17th सेंचुरी के मॉलियर का नाटक लेकर के।
तो बात करें इस नाटक की, एक तो मॉलियर का है कंजूस, उसके आप
नहीं,
क्या
मैं
करते
मॉलियर
हैं?
का तार्तूफ करने आया हूं,
अच्छा,
कंजूस नहीं।
थोड़ा सा
जिसका
उसके
जी
बारे में बता
जी
दें।
मॉलियर ने कमाल का ये नाटक लिखा था 1664 में, 1664 में, जिसका नाम तो रखा था उन्होंने तारतूफ और द इम्पोस्टर। ये नाटक एक ऐसे समाज के बारे में है जहां अक्सर हम लोग को, मुझे हमारे समाज में हम लोग क्विक फिक्सेस की बहुत हमको तलाश रहती है। तो इसी तरह से स्पिरिचुअलिटी को लेकर के भी हमारे समाज में लोग क्विक फिक्स ढूंढते हैं, या जेन्युइनली रिलीजियस होना आदमी के लिए एक बहुत मुश्किल काम है, और वो उसके बजाय हम लोग क्विक फिक्स ढूंढते हैं कि कोई एक बाबा मिल जाए हमको, कोई एक बाबा हमको उससे हमारा रिश्ता करवा दे ऊपर वाले से।
ऐसे बाबा बहुत
मिल जाएंगे, ढोंगी बाबा। तो ऐसे ही एक समाज की और ऐसे एक ढोंगी बाबा की कहानी उन्होंने लिखी थी, बहुत कमाल की, द इम्पोस्टर में, द तारतूफ में, और उसी का ये अडेप्टेशन है, और इसका नाम रखा है श्री 420। मैंने स्पेशली इसको मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अडेप्ट किया है। एक हिंदुस्तानी फैमिली जो कि सिडनी में रहती है, आप तो खुद यहाँ 30 सालों से, आप जानती हैं।
बात करें फिल्मों की, आप कहते हैं आप एक रिलक्टेंट एक्टर हैं,
जी
बेमना सा आप एक्टिंग करते हैं, लेकिन आपकी जो एक्टिंग थी द थ्री इडियट्स में, वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा देखा गया सीन है, सबसे ज्यादा कॉमेडी है
जी,
सीन
जी,
में
जी।
उसका कोई डायलॉग याद
नहीं? मैं बेमना सी एक्टिंग नहीं करता हूँ।
नहीं,
एक्टिंग इज नॉट माई फर्स्ट प्रायोरिटी। एक्टिंग में जब करता हूं, जैसे कि मैं जब भी बाथरूम में गाता हूं तो पूरे मन से गाता हूं, लेकिन मैं एक्टिंग तलाश करने नहीं जाता हूं। मैं अपने आप को एक्टर मानता नहीं हूं, जैसे मैं अपने आप को सिंगर नहीं मानता हूं, हालांकि गाता रोज हूं, रोज नहाता हूं और रोज गाता हूं, मगर फिर भी अपने आप को सिंगर नहीं मानता हूं।
आज भी
इसी
रोज
तरह
है,
से
याद रखिएगा, आज भी रोज है, उस पर भी आएंगे हम।
और बड़ा मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे कुछ हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिल्मों में, इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं कि वो चली बहुत ज्यादा है, पीके जैसी फिल्म राजकुमार हिरानी जी के साथ, आमिर खान साहब के साथ,
अच्छा।
या थ्री इडियट्स जिसका आपने जिक्र किया, अगेन राजकुमार हिरानी जी के साथ। तो राजकुमार हिरानी जी का अगर आप फिल्म करियर का इतिहास देखेंगे तो उनकी जिंदगी की जो पहली फिल्म थी 20 मिनट की कॉर्पोरेट फिल्म, उसके हीरो का नाम था अतुल तिवारी। तो हमारा उनका रिश्ता इसलिए जाता है, बहुत पुराना जाता है उसका, वो सिर्फ डायरेक्टर और एक्टर का रिश्ता नहीं है, वो एक दोस्ती का रिश्ता है। हमने बाद में भी आगे चल के बहुत काम साथ में किए, एक मेरी फिल्म थी लिखी हुई मिशन कश्मीर जिसके वो एडिटर थे, और उसके संवाद मेरे लिखे हुए आपने सुने होंगे।
सुखिया प्रवेश को
आए हो किस बगिया से,
टिकट निकालो।
थ्री इडियट्स मुझे करने का जब उन्होंने एक दिन बुलाया कि मतलब जी आप ही करेंगे ये, तो इत्तेफाकन वो इतना इंपॉर्टेंट सीन था, इतना पिविटल सीन था, इतना छोटा सीन है वो, मुश्किल से 2.5-3 मिनट का सीन है वो फिल्म में, लेकिन इतना पिविटल सीन है और इतना फनी सीन है, थैंक्स टू द राइटिंग ऑफ अभिजात जोशी एंड राजकुमार हिरानी, थैंक्स टू पीपल लाइक आमिर खान और चतुर महालिंगम।
आदरणीय मंत्री जी नमस्कार, आपने इस संस्थान को वो चीज दी जिसके हमें सख्त जरूरत थी।
धन धन
स्तन
एक और हुनर है अतुल साहब का, और बहुत ही नायाब चीज करते हैं, म्यूजियम स्थापित करते हैं। तो पंजाब में एक म्यूजियम स्थापित हुआ है, अब एक लेटेस्ट हमें बताइए, तो ये कहाँ पर आप म्यूजियम?
जी पंजाब में भी मैं एक म्यूजियम में मैं, और जब जब को मुझे मेरे साथ जब म्यूजियम्स का नाम जुड़ता है तो थोड़ा सा मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये म्यूजियम्स जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिनकी संख्या आज की तारीख में 4-5 म्यूजियम्स की है, ये म्यूजियम्स तोशाखाना नहीं है। आमतौर से म्यूजियम्स जो थे वो हमारे यहाँ कहते थे वस्तु संग्रहालय, कि ये गांधी या अजायब घर जहां वो कुछ अजीब चीजों का संग्रह हो, तो वहां जैसे कि ये गांधी जी का चश्मा है, ये गांधी जी का चप्पल है, ये गांधी जी का चरखा है, ये उनका डंडा है। अब क्या था कि चश्मे तो 2-4 थे, चरखा एक ही था, डंडे एक आध थे, वो ऑलरेडी बहुत महत्वपूर्ण म्यूजियम्स में स्थापित हैं। तो अब हम अपने म्यूजियम में क्या दिखाएंगे, और अब म्यूजियम्स का थोड़ा सा मिजाज भी जो है वो बदल रहा है। तो जो म्यूजियम्स मैं जो बनाता हूं, जिनको बनाने में मैं सहायक रहा हूं, वो म्यूजियम्स हैं एक्सपीरियंशियल सबमर्सिव म्यूजियम्स। ये वो म्यूजियम्स हैं, ये वो म्यूजियम्स हैं जहां की जा करके आप एक कालखंड में पहुंच जाएं, उसमें डूब जाएं, तभी वो सबमर्सिव कहलाता है, और उस कालखंड में आप डूब सकें और उस कालखंड का आप अनुभव ले सकें, उन व्यक्तियों से आप मिल सकें, उसका एक अनुभव आप एक महसूस, एक, एक महसूस कर सकें। जैसे कि मुझे बड़ा गर्व है ये कहने का कि महात्मा गांधी पे एक म्यूजियम जिससे मुझे जुड़ने का मौका मिला, जो गांधीनगर गुजरात में स्थापित है, वो संसार का सबसे बड़ा म्यूजियम है किसी भी व्यक्ति के जीवन पे आधारित, जो महात्मा गांधी का म्यूजियम है जिसका नाम है दांडी कुटीर। लेटेस्ट म्यूजियम जो है जो अभी तैयार हुआ है दिल्ली में, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल पे, जिसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल।
क्या बात, बहुत शुक्रिया, हमारे ज्ञान में बहुत बढ़त हुई, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके, शुभकामनाएं आपके।
बहुत 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 शुक्रिया मुझे।